ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद लीलामृत अमेरिका में प्रचार भाग एक पृष्ठ संख्या 357 यहीं से प्रभु लेफ्टिनेंट डेविड रोजी जो शिकागो पुलिस विभाग का जनसंपर्क प्रतिनिधि था प्रभुपाद के अपराध रोकने के विचार में रुचि रखता था। श्री प्रभुपाद ने उसके सामने अपना सीधा साधा प्रस्ताव रखा कि सरकार इस कान को एक विशाल इमारत दे जहां भक्त नियमित रूप से सार्वजनिक कीर्तन करेंगे और प्रसाद बांटेंगे और लोग धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। मेयर वॉनमैन की तरह लेफ्टिनेंट मोजी ने भी प्रभुपाद के प्रति आदर दिखाया, रुचि प्रदर्शित की। क्या समझ में आई बात इससे? कुछ बात प्रभुपाद ने जो यहां पे एक प्रपोजल दिया है, वो प्रपोजल का क्या लाभ है आज के जिस सिनेरियो, तो बहुत साल पुरानी बातें हैं, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो आज की जो स्थिति चल रही है उसमें ये कहाँ तक फिट बैठता है, इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, बताइए। इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा जो सेंटेंस यूज किया है उसमें एक हल्का सा चेंज चाहिए, एक हल्का सा बदलाव चाहिए। उस समय के हिसाब से, उस सिटी के हिसाब से ठीक है, हम आज की बात कर रहे हैं। यहां जहां लिखा गया है कि सरकार इस कान को एक विशाल इमारत दे, यहां होना चाहिए कि सरकार इस कान को बहुत सारी विशाल इमारतें दे, अलग अलग एरियाज में। इतना बड़ा दिल्ली है, इतना बड़ा इंडिया भारत वर्ष, एक इमारत से क्या होगा, तो क्या चाहिए, बहुत सारी इमारतें हों और बहुत सारे भक्त हों, हर इमारत में जो है कीर्तन चलता रहे, प्रसाद बढ़ता रहे, भगवत कथा होती रहे, तो उससे होगा क्या, फायदा क्या होने वाला है। जब हम चार नियमों के पालन की बात करते हैं, समझिएगा, समझने का प्रयास करिए, उसमें एक नियम क्या है कि आपको कोई भी तामसिक पदार्थ का भोजन नहीं करना, क्योंकि जो तामसिक पदार्थ हैं वो आपके मन को भटकाते हैं, उद्वेलित करते हैं। आपका मन जब भटकता है तो भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपने जो एक एक अच्छे संस्कार हैं उनके प्रति केंद्रित ना होके संसारिक भोगों की ओर आकर्षित हो जाता। तो जब कीर्तन होगा, प्रसाद बंटेगा, कथा होगी, ज्ञान मिलेगा, क्या ज्ञान मिलेगा कि हमें मन को भटकाने वाली किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली शुद्धता आएगी, पीपल विल बिकम प्योरिफाइड। एक दूसरा नियम क्या है, किसी भी नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना। जब नशीली वस्तु का प्रयोग करते हैं तो नशे के अंदर व्यक्ति भूल जाता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और किससे बात कर रहा हूं, उसके मन के अंदर किसी प्रकार का भी सात्विक विचार नहीं रहता। वो उसके सामने माता आ जाए, बहन आ जाए, अपशब्द इस्तेमाल कर देगा, गलत शब्द इस्तेमाल कर देगा, झगड़ा कर लेगा, लड़ाई कर लेगा, बेइज्जती कर देगा, मतलब उसको जो है ध्यान नहीं रहता। तो जब नशा नहीं होगा तो ये सब नशे की दुकानें बंद हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली फिर समाज में शुद्धता आएगी। तीसरा नियम क्या है, इलेजिटिमेट रिलेशनशिप, मतलब पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध नहीं होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो है प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक पुरुष के मन में स्त्री के लिए माता का भाव आ जाएगा, चाहे एक साल का बच्चा हो और चाहे 100 साल की हो, उसको माता ही पुकारते हैं, छोटी माता जी, बड़ी माता जी कह सकते हैं पर कहेंगे माता ही। तो जब ये भाव आ जाएगा तो जो आज के अखबार उठाते ही पढ़ते हैं रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुष्कर्म किया, दुर्व्यवहार किया वगैरह, सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो उसका जो एक ब्लूप्रिंट है, उसका जो एक खाका है, उसका जो एक प्रपोजल है, उसका जो जिस्ट है प्रभुपाद के यहां इस सेंटेंस का, ये सरकार इस कान को विशाल इमारत दे जहां भक्त नियमित रूप से सार्वजनिक कीर्तन करेंगे, प्रसाद बांटेंगे और लोग धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। आज के समाज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुद्धता नहीं है। अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया है तीसरे अध्याय के अंदर कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने को प्रेरित क्यों हो जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसे जबरदस्ती इसमें लगाया जा रहा हो। और भगवान क्या उत्तर देते हैं, इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम। काम मतलब कामनाएं, कामनाएं हैं संसारिक भोगों को भोगने की। जब संसारिक भोगों को भोगने की कामना होती है तब अधर्म होता है। जब आप हर कार्य जो है भगवान के प्रति करेंगे, भगवान के निर्देश के अनुसार करेंगे, तब अधर्म नहीं होगा। तो ये जो आज के कार्य हो रहे हैं ये केवल इसलिए हैं कि हमारी जो संस्कृति बन गई है, हमारा जो कल्चर बन गया है, हमारा जो समाज बन गया है, वो भगवान के प्रति केंद्रित नहीं है। वो केंद्रित है किसके प्रति, सांसारिक भोगों के प्रति। तो यहां जो ये बताया जा रहा है इसका अर्थ केवल ये है कि लोग सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षण को छोड़ के भगवान के प्रति आकर्षण को स्वीकार करें। जितने भी लोग कथा में आते हैं, मंदिर में आते हैं, सेवा करने में आते हैं, अपने हृदय पे हाथ रख के देखें, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, ये क्या ग्रेजुअली हौले 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 साधना करते करते, जप करते करते, कथा सुनते सुनते, प्रसाद पाते पाते उनकी सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति कम हुई है कि नहीं हुई है? क्या यहां आने से पहले जो विचार थे, क्या वही विचार यहां आने के बाद भी हैं या अभी तक वैसे ही विचार चल रहे हैं? कितने लोग मानते हैं कि विचारों में बदलाव आया, हाथ खड़ा करें। तो अगर इतने छोटे से झुंड के अंदर हम कह रहे हैं कि विचारों में बदलाव आया है, अगर हमें बहुत सारी इमारतें मिल जाए, एक इमारत नहीं, कितनी, बहुत सारे। अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, अभी इमारतें हमें खुद बनानी पड़ रही हैं। जगह जगह सेंटर बन रहे हैं, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, तो हम खुद बना रहे हैं, सरकार का इसमें योगदान नहीं है। वो हमें जमीन अलॉट करती है सरकारी रेट पे, कोई कंसेशन नहीं देती, कोई छूट नहीं देती, या भगवत भक्ति का काम कर रहे हो, लीजिए हमारी तरफ से आपको एक बिल्डिंग इस एरिया में, एक बिल्डिंग इस एरिया में, एक बिल्डिंग इस एरिया में। यहां उस जो है प्रपोजल की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद ने कहा जब तक आप हृदय को स्वच्छ नहीं बनाते तब तक केवल कानून से आपराधिकता बंद नहीं कर सकते। चोर और हत्यारे को कानून मालूम होते हैं तो भी वे दुष्कर्म करते हैं क्योंकि उनका दिल साफ नहीं होता। और हमारी पद्धति दिल साफ करने के, हृदय शुद्ध होगा ना, दिल साफ का मतलब क्या है कि हृदय में शुद्धता आनी चाहिए। लेफ्टिनेंट मोजी ने कहा महोदय ये बहुत कठिन कार्य है। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया कार्य कठिन नहीं था, वे इस छोटे पैमाने पर अभी भी कर रहे थे। उन्होंने कहा उनके सामने समस्या है, अपराध क्यों और उसे रोकने के लिए क्या करना है, और हम उसका उत्तर दे रहे हैं, आप इसका लाभ उठाएं। प्रश्न है अपराध क्यों, हम कहते हैं क्योंकि वे नास्तिक हैं और क्या करना है, हरे कृष्ण कीर्तन करो और प्रसाद लो, यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हम अपना काम कर ही रहे हैं। जैसे गरीब डॉक्टर हो वे भी दवा देता है, किंतु यदि उसे सुविधा दी जाए तो एक बड़ा औषधालय खोल सकता है। तो हमारी स्थिति क्या है, बड़े औषधालय की है या गरीब डॉक्टर की है, क्या स्थिति है? कितने लोग मानते हैं कि हम बड़े औषधालय में बैठे हैं, बताइए, बड़ा है? दिल्ली में 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2.25 करोड़ की। पंजाबी भाग में 2-3 लाख तो होंगे, ज्यादा तो सही होंगे इतने लोग। आसपास के जो एरियाज हैं 5-5 किलोमीटर के, सब मिला के तो अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन जो है 8-10 लाख की हो जाएगी। मंदिर में कितने लोग आते हैं, कितने हैं इस वक्त उपस्थित, कितने होंगे, कितने होंगे लोग जी? 100-125 सौ। तो औषधालय जो है, अगर 10 लाख लोग आ जाएं तो क्या इस औषधालय में समा पाएंगे? तो छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? आपके एरिया में एक डॉक्टर बैठा है कि 100 डॉक्टर बैठे हैं, 200 डॉक्टर बैठे हैं, कितने लोग हैं? अस्पतालों में नंबर नहीं आता, मतलब कम है अभी अस्पताल। भौतिक संसार की बात कर रहा हूं, तो आध्यात्मिक संसार के लिहाज से ये औषधालय बहुत छोटा है। क्या चाहिए? प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि सुविधा दी जाए तो एक बड़ा औषधालय खोल सकता है, यही हमारा प्रस्ताव है। हम ये काम पहले से कर रहे हैं, किंतु हमें अधिकारियों से सुविधा मिले तो हम एक बड़ा औषधालय खोल सकते हैं। समस्या पहले ही बहुत बड़ी बन चुकी है, अन्यथा वे क्यों कह रहे हैं, क्या किया जाए? देखिए क्या है कि जब मंदिर बनता है तो उसके लिए धन चाहिए, और 98% धन आता है उन लोगों से जो कि भगवान की भक्ति में थोड़ा विश्वास रखते हैं या संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति दूसरी संस्था से जुड़ा है तो हमको डोनेशन नहीं देगा, और जो हमारी संस्था से जुड़ा है दूसरे को डोनेशन देने से पहले सोचेगा उनको दूं या ना दूं, क्योंकि यहां देना है। परंतु जो सिनेरियो चल रहा है, करंट स्थिति चल रही है, जो एक, एक, एक महंगाई है, दो बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको देखते हुए लोग देना चाहते हैं परंतु दे नहीं पाते। मैं बहुत जगह गया हूं लेक्चर देने के लिए, बहुत जगह से ऑफर आती है, तो ये रानीखेत में आपको 2 एकड़ जमीन देते हैं मंदिर बनाइए, चित्रकूट में 2 एकड़ जमीन देते हैं मंदिर बनाइए, अल्मोड़ा में 1 एकड़ जमीन देते हैं मंदिर बनाइए, कोटद्वार में जमीन देते हैं मंदिर बनाइए। जमीन तो जब दे दी उसने बहुत अच्छा कार्य किया, पर ऊपर चलाने के लिए भक्त चाहिए और बनाने के लिए धन चाहिए, दोनों की कमी हो जाती है। तो हम जो है जमीन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी शर्त यही है कि मंदिर बनेगा तब जमीन देंगे। लोग औषधालय बड़ा खोलने के लिए तैयार हैं, परंतु उसमें सरकार का सपोर्ट ना होने की वजह से जो एक रिसोर्सेज हैं बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, और हम अपने आप को हैंडीकैप्ड महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ कमी आ रही। जो काम हम 2 साल में करना चाहते हैं वो हमारा 5 साल में 6 साल में पूरा होता है, क्योंकि हमें फंड्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परंतु एक उदाहरण है, तिरुपति में जो इस्कान टेम्पल है उसके दर्शन कितने लोगों ने किए हैं? क्या खासियत है जी उस मंदिर के? 2 खासियत बताई। यस, एक हो गया वहां पे राधा कृष्णा के साथ अष्ट सखियां हैं, जैसे कि मायापुर में अष्ट सखियां हैं, ऐसे अष्ट सखी मंदिर है। दूसरा, जोर से बोलो जरा, पूरे टेंपल की कंस्ट्रक्शन में कोई डोनेशन नहीं लिया गया, पूरा टेंपल बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जो प्रॉफिट आता है उससे बना है। सोचिएगा कि कितने करोड़ रुपया बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आया होगा। ताली बजाइए इस बार। क्या हम लोग उत्तर भारत में एक प्रण नहीं ले सकते कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके नए से नए सेंटर खोलेंगे? कर सकते हैं जी, मेहनत कर सकते हैं ना, कि हम लोग भी पुस्तक वितरण करके भगवान के नाम के प्रचार के लिए नए से नए औषधालय स्पिरिचुअल औषधालय, मैं आध्यात्मिक औषधालय की बात कर रहा हूं, मैं भौतिक डॉक्टरी दवाई वाले औषधालय की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब स्पिरिचुअल औषधालय मतलब टेम्पल्स या प्रीचिंग सेंटर्स कुछ चलाएं या खोलें, किसके माध्यम से? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। एक बहुत बड़ा हथियार है और तिरुपति टेम्पल ने हमको उस हथियार को ठीक तरीके से इस्तेमाल करके दिखाया है कि कैसे आप प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके एक बहुत बड़े मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, बहुत बड़े मंदिर की। छोटा नहीं है, अब जाके देखिएगा। छोटा है जी, माता जी बैठी पीछे, आपने देखा छोटा है बड़ा? छोटा है बड़ा? बहुत बड़ा। तो यहां जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इलिनास राज्य का विधायक जॉन पोर्टर भी, जो अपनी पत्नी के साथ आया था, अपराध का समाधान जानना चाहता था, किंतु उसकी अधिक सीधी और व्यक्तिगत रुचि आध्यात्मिक जीवन में थी। उसने पूछा कि क्या मंदिर में रहे बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव थी? तो श्री प्रभुपाद ने उससे कहा, हाँ, यदि वे हरे कृष्ण कीर्तन करे, और यह कीर्तन कहीं भी किया जा सकता था, और उसे कृष्ण भावनावृत आंदोलन की मानक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जितने लोग यहां बैठे हैं उनमें से कितने लोग मंदिर में रहते हैं? प्रभु जी रहते हैं, और भी कोई है मंदिर में रहने वाला? वो सारी टीम जो है मायापुर गई हुई है, मायापुर गई हुई है। परंतु कहने के तात्पर्य यह है कि जितने भी हम लोग यहां बैठे हुए हैं, सारे के सारे अपनी गृहस्थी में, अपने घर के अंदर जो रहते हैं, और वहीं रहकर हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, और अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए कि बिल्कुल ठीक से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं। हम 24 घंटे तो मंदिर में नहीं रहते ना, बाहर रहते हैं ना हम। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन कहीं भी किया जा सकता है, और उसे कृष्ण भावनावृत आंदोलन की मानक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। श्रीमान पोर्टर ने कई ईसाई धार्मिक बातों के संबंध में भी कृष्ण भावनावृत आंदोलन का विचार जानना चाहा, जैसे मूल पाप और मोक्ष, किंतु श्री प्रभुपाद ने सैद्धांतिक या तुलनात्मक धर्म के विवाद में अपने आप को नहीं पढ़ने दिया, किंतु ईश्वर या उसके प्रतिनिधि के आदेशों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, मुख्य कार्य ईश्वर को समझना है। कितने लोग भगवान को जानते हैं? कितने लोग जानते हो? भगवान अनंत हैं, उनकी शक्तियां अनंत हैं। क्या हम अनंत हैं? हमारा तो अंत है। तो क्या हम इस भौतिक संसार में रहते हुए इस भौतिक बुद्धि के द्वारा जो दिव्य भगवान है उनको जान सकते हैं, जो कि अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और अनंत स्वयं है? अनंत को कहते हैं ना भगवान, क्या जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो कैसे बनेगी बात? क्या करना पड़ेगा? कितना जाने कि हमारा गुजारा चल जाए? कितना जानना चाहिए? कितना जानना चाहिए? उस जानने के लिए सबसे आवश्यक एक चीज है, केवल एक चीज। बिगिनिंग होती है श्रद्धा से, कि आपको शास्त्रों के वचन पर और गुरु के वचन पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद भागवतम के 3rd स्कंद के 29वें अध्याय के 16वें श्लोक के परपट में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, श्रद्धा में बात आती है, बड़ी सुंदर चर्चा की है। एक नव दीक्षित भक्त, मतलब जो नया नया भक्त बना है, भक्ति में आ रहा है, मंदिर में आ रहा है, सेवा में रत होता है, थोड़ा बहुत उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भगवान के अर्च विग्रह के सामने खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे अपने दर्शन दीजिए। इसका क्या अर्थ? हे भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। और एक भक्त जो साधना कर रहा है, साधना में एक्सपर्ट होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करता है, कृष्ण भावनावृत में काफी आगे बढ़ चुका है, वो भगवान के सामने खड़ा होके, अर्च विग्रह के सामने खड़ा होके कहता है, भगवान आपने बड़ी कृपा करी जो मुझे दर्शन दिए, मुझे बताइए मैं आपकी सेवा में अपने आप को कैसे लगाऊं, मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, मतलब गुरु के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, वो रिक्वेस्ट ये करता है कि मैं अपने आप को आपकी सेवा में कैसे लगाऊं। तो क्या भेद है दोनों में? उसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि अर्च विग्रह भगवान है। तो हम लोगों में से कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान है? अभी भी हाथ खड़ा करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है कि हम इनको भगवान स्वीकार नहीं करते। आपने घर के अंदर अगर भगवान की छवि लगा ली, राधिका रमन जी की कैलेंडर छवि लगा ली आपने, फ्रेम कर लिया, बिना फ्रेम के लगा ली, और आप उनको जो है घर में भोग लगाना शुरू कर देते हो, तो भगवान वही हैं उस वक्त, और मतलब आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये तो फोटो है, भगवान आए। मुझसे अभी परसों जो है किसी ने प्रश्न किया, कहते आप बताइएगा कि आप इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, क्या भगवान से मिले हैं, या भगवान आपको कभी मिले हैं, या भगवान ने कभी आपको दर्शन दिए हैं? एक एक साधारण सा प्रश्न है, तो उत्तर क्या होना चाहिए? रोज मिलते हैं, रोज हर साल हर पल मिलते हैं, क्योंकि जो कार्य करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं। हम तो जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसमें भगवान को देखते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रसाद और भगवान में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। तो भगवान की उपस्थिति हम हर जगह महसूस करते हैं, हर जगह हम उनसे मिलते हैं, हमारे में भगवान से हम दूर नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है, क्योंकि हमारी श्रद्धा जो है इतनी ज़्यादा परिपक्व हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं अब निष्ठा में कन्वर्ट हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने अनर्थों से पार पाने के लिए, और हम कर रहे हैं कोशिश, हमारी कोशिश सफल हो रही है। तो यहाँ जो है इसके बाद जो है लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है श्रीमान पोर्टर भक्तों के वास्ते किसी विशाल इमारत को प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकता था, किंतु उसने विनीत भाव से आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहा। प्रभुपाद का कृष्ण भावनामृत का प्रचुर दान बिना किसी शर्त के था, चाहे कोई विधायक हो अथवा अपराधी, यदि वह निष्ठापूर्वक जानना चाहता था तो श्री प्रभुपाद उसे भगवान चैतन्य की कृपा का दान देने को सदैव तत्पर रहते थे। शील प्रभुपाद शिकागो यात्रा में मंदिर के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित थे। तमाल कृष्ण गोस्वामी और विष्णु जन स्वामी शिकागो प्रभुपाद से मिलने और ये संस्तुति करने आए थे कि वे उन 75 नए भक्तों का दीक्षा संस्कार करें जो राधा दामोदर यात्रा संकीर्तन दल में सम्मिलित हो चुके थे, और यह एक सप्ताहांत में प्रभुपाद को पुराने शिकागो की राधा यात्रा जलूस में सम्मिलित होना था। प्रतिदिन सवेरे प्रभुपाद इमास्टन मंदिर के विशाल कक्ष में कई सौ भक्तों को संबोधित करते हुए अजामिल के जीवन के बारे में बताते थे। प्रतिदिन वे पापी अजामिल के इतिहास के बारे में अधिक बताते थे, जिसने मृत्यु शैया पर भगवान नारायण का नाम पुकार कर मोक्ष प्राप्त किया था। चौथे दिन प्रभुपाद इस बात की व्याख्या कर रहे थे कि अजामिल ने अपने एक पुत्र का नाम नारायण क्यों रखा था। कृष्ण की कृपा से अपने जीवन के प्रारंभ में अजामिल कृष्ण भक्त बन गया था। उसने दीक्षा ली थी, वर्षों बाद कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, तुम तो सबसे छोटे लड़के का नाम नारायण रखो, चूंकि इस लड़के से तुम्हारा स्वभावतः स्नेह रहेगा, इसलिए तुम कहोगे नारायण नारायण यहाँ आओ, नारायण खाना खाओ, नारायण पानी पियो, इस तरह तुम नारायण भजते रहोगे। श्री प्रभुपाद अचानक सन्न रह गए और बोलने में असमर्थ हो गए। ऐसी बात पहले भी हुई थी परंतु बहुत कम। भाव विभोर बने रहे और कक्ष अत्यंत शांति में डूबा रहा। भक्त देख रहे थे कि प्रभुपाद शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति में निमग्न थे। बहुतों को ऐसा लगा जब उन्होंने नारायण को पुकारा तो नारायण के आमने सामने हो गए, वे कृष्ण को देख रहे थे और कृष्ण प्रदर्शित कर रहे थे वे अपने शुद्ध भक्त के कितने प्रसन्न थे। बहुत सुंदर बात कही भगवान। भगवत गीता में कहते हैं अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य चेता, तेरे चिंतन में तेरी चेतना में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनने की बात है, तेरी चेतना में तेरे चिंतन में तेरे स्मरण में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। अनन्य चेता सततम, लगातार निरंतर कोई अंतर नहीं आना चाहिए, गैप नहीं है। सुबह स्मरण कर लिया, शाम स्मरण कर लिया, कैसा स्मरण है? हर क्षण हर पल माम स्मृति नित्यशः। नित्य फिर शब्द इस्तेमाल किया है, मतलब हर क्षण हर पल। तस्या अहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना, अर्थात भक्ति योग के द्वारा आपको हर क्षण हर पल मुझसे जुड़ा रहना है, मतलब मेरे प्रति समर्पित रहना है। तस्या अहम सुलभ पार्थ, पार्थ शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि महारानी कुंती अर्थात वृथा कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कभी उसने मुझे विस्मृत नहीं किया, मेरा विस्मरण नहीं किया, हर क्षण हर पल मेरा स्मरण करती रही। तुम उसी प्रथा के पुत्र हो, तुम्हें भी ऐसा ही करना, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। होगा क्या? तुमने पुकारा और हम चले आए। तस्या एम सुलभ, यहां यही बात हो रही है कि बहुतों को ऐसा लगा जब उन्होंने नारायण नारायण लेक्चर में नारायण नारायण पुकारा, कृष्ण सामने आ गए। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी, क्यों? कि श्रील प्रभुपाद का जीवन हर क्षण हर पल कृष्ण के प्रति समर्पित था, उनके स्मरण से एक क्षण के लिए भी कृष्ण परे नहीं होते थे। जैसे ही उन्होंने कहा नारायण नारायण यहां आओ, नारायण खाना खाओ, नारायण पानी पियो, इस तरह तुम नारायण भजते रहोगे, नारायण नारायण पुकारा तो ऐसा लगा कि नारायण उनके सामने है और इसी अनुभूति में खो गए, गला रुंध गया, आवाज बंद हो गई, एक तरीके से वो भाव में आ गए। यहां लिख रहे हैं प्रभुपाद शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति में निमग्न थे, वे भाव विभोर बने रहे, भाव में आ गए। वो कक्ष अत्यंत शांति में डूबा रहा, ऐसा लगा जब उन्होंने नारायण को पुकारा तो वे नारायण के आमने सामने हो गए, वे कृष्ण को देख रहे थे और कृष्ण प्रदर्शित कर रहे थे कि अपने शुद्ध भक्त से कितने प्रसन्न थे। ऐसा कभी होता है क्या हम लोगों के जीवन में? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ का सिस्टम क्या है, 24 घंटे में से हम 7-8 घंटे तो सोते हैं। सोते हैं नहीं सोते? कितने घंटे सोते हैं प्रभु जी? 7-8 घंटे, 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे, 2 घंटे भजन करते हैं, स्मरण 2 घंटे के लिए, जिसमें मन जो है कृष्ण को छोड़ के बाएं दाएं भटकता रहता, दुनिया भर की बातें याद आती हैं, कृष्ण याद नहीं आते, फिर खींच के लाना पड़ता है, फिर चला जाता है, फिर खींच के लाना पड़ता है, फिर चला जाता है। चलो मान लिया हमने कि हमने 10 घंटे जो है बिता दिए, 24 घंटे में से 14 घंटे हम भगवान का स्मरण करते हैं कि संसार का स्मरण करते हैं? किसका स्मरण करते हैं? तो संसार मिलेगा कि भगवान मिलेंगे? क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? यहां से बाहर निकलते ही ना, तेरा स्वेटर कैसा है, तेरा शॉल कैसा है, तेरी कोट कैसी है, तेरी रोटी कैसी, इसकी चर्चा चालू हो जाएगी। आज वहां गए थे, आज वहां जाना है, इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी और भगवान की बातें इसी कमरे तक रह जाएंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगी। श्रील प्रभुपाद की शिकागो यात्रा की चर्चा चल रही है। कृष्ण प्रभुपाद से सचमुच बहुत प्रसन्न थे, यद्यपि प्रभुपाद भौतिक संसार के अंदर ही अपने आंदोलन के बहुत सारे धंधों में पूरी तरह व्यस्त रहते थे, किंतु कृष्ण नित्य उनके साथ थे। जब कुछ चर्चा चल रही थी, एक बार की बात है, श्री प्रभुपाद से पूछा कि इस वक्त तो आप भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, भगवान की चर्चा नहीं हो रही है, आप मंत्र का जप भी नहीं कर रहे हो, अब तो संसारिक बातों में बिल्डिंग कैसे बनेगी, मकान कैसे बनेगा, भक्तों के क्वार्टर कैसे बनेंगे वगैरह वगैरह, सब कार्य भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए हो रहा है। तो श्री प्रभुपाद ने कहा मेरी पीठ पे अपना कान लगाओ। जब पीठ पे कान लगाया तो अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण चल रहा था, कंटिन्यूअसली सुनाई दे रहा। वो लेवल अचीव करना आसान कार्य नहीं है, किंतु कृष्ण नित्य उनके साथ थे। आध्यात्मिक जगत में उन्हें आश्वस्त किया करते थे, भक्तों के लिए आंदोलन आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व की संपुष्टि करता था, और इस बात की भी संपुष्टि करता था कि प्रभुपाद उस आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति थे जो भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत देने आए थे। यहां दो बातें आती हैं, हम चर्चा करते हैं नित्य मुक्त और नित्य बद्ध की। हम कहते हैं भौतिक संसार में आए हैं तो नित्य बद्ध होंगे, अर्थात बंधन में होंगे, परंतु यहां जो है स्पष्ट उल्लेख है कि नित्य मुक्त जीव को भगवान इस भौतिक संसार में भगवान नाम का प्रचार करने के लिए भेजते हैं, वो कभी भी बद्ध नहीं होता, कभी भी बंधन में नहीं होता, वो नित्य मुक्त था और नित्य मुक्त ही रहता है। यही बात यहां कह रहे हैं कि प्रभुपाद उस आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति थे जो इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत देने आए थे। अधिकांश भक्त अभी नए थे और अब भी भौतिक जगत से बंधे थे, और जिन्हें आध्यात्मिक जगत की झलक नहीं मिल पाई थी, किंतु अब वे श्री प्रभुपाद की भाव विभोरता के माध्यम से आध्यात्मिक जगत को देख सकते थे। लगभग एक मिनट के बाद श्री प्रभुपाद ने पुनः बाह्य संज्ञा प्राप्त की और उनके मुख से निकला बहुत अच्छा। एक मिनट का गैप आया है बोलने बंद होने में और बोलना शुरू होने में, उस एक मिनट के लिए प्रभुपाद कहां थे? क्या इस भौतिक संसार के अंदर भक्तों के संग थे या आध्यात्मिक संसार में कृष्ण के संग थे? शब्द पढ़िएगा कि एक मिनट के बाद श्री प्रभुपाद ने पुनः बाह्य संज्ञा प्राप्त करी। बाह्य संज्ञा मीन्स जो आसपास बैठे लोग हैं उनके साथ कनेक्शन, उसके साथ संलिप्तता एक मिनट के बाद आई। एक मिनट के लिए प्रभुपाद इस लोकल जो कनेक्शन था उससे परे थे, वो आध्यात्मिक जगत में थे कृष्ण के साथ। और तब उन्हीं शब्दों के साथ जिनका प्रयोग वे अपने व्याख्यान समाप्त करने में किया करते थे, उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तदंतर भक्तों ने तुमुल संगीतमय कीर्तन आरंभ किया। यह एक विशेष अवसर था और भक्तों ने इसे अपने हृदयों में रख लिया। समय है बहुत लंबा है, इसके बाद 6 पेज हैं, आज यहीं समाप्त कर दें। श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। कितने लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा? एक छोटा पुस्तक भी आता है श्री प्रभुपाद, पतला सा, वो भी कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? एक बात बताइए मुझे, अभी इससे अलावा चर्चा करते हैं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट हैं हमारे पास। भागवतम में और भगवत गीता में क्या भेद है, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए, भागवतम में और भगवत गीता में क्या भेद है?
भागवतम में भगवान
भागवतम में भगवान की लीलाएं हैं और भगवत गीता जहां से खत्म होती है वहां से भागवतम शुरू हो जाती है। भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में क्या भेद है, या भगवत गीता में और चैतन्य चरितामृत में क्या भेद है? ये तो गौर पूर्णिमा आने वाली है, 5 तारीख की है, क्या भेद है दोनों? एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, उससे आपको जो है ये ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए समझ में आ जाएगा। 2 मिनट की बात है। भगवत गीता के अंदर अर्जुन के प्रश्न हैं और भगवान के उत्तर हैं। अर्जुन के अंदर जो अर्जुन के मन में जो मोह व्याप्त हो गया था, जो एक बात आ गई थी कि मुझसे पाप कर्म हो जाएगा, उसका अल्टीमेट जो है अर्जुन प्रश्न करता गया, भगवान उत्तर देते गए, अर्जुन के प्रश्न आते गए, भगवान के उत्तर आते गए, और एक स्टेज ये आई कि भगवान ने कहा अंत में आके, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, और फिर उसके बाद कहा सर्वधर्मान प्रत्यजम माम एकम शरणम प्रजा, अपना मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अभी बात यहां पर महाभारत के इस प्रकरण में समाप्त हो गई, आगे कैसे करना है ये बात महाभारत के अंदर उल्लेख में नहीं आई। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक ये चर्चा भगवद गीता की, इन 18 अध्याय को फिर उठा के संकलित कर दिया है, नाम लिखा गया गीतोपनिषद या भगवत गीता। भागवतम के अंदर ये कार्य कैसे करने हैं, मन कैसे देना है, भक्ति कैसे करनी है, भक्त कैसे बनना है, पूजा कैसे करनी है वगैरह वगैरह, भक्तों की लीलाओं के माध्यम से बताया गया। भक्तों की लीलाएं, भक्तों की कहानियां, भक्तों की स्टोरीज, भगवान के उनके साथ जो लीलाएं हुई हैं, भगवान ने उनके साथ किस प्रकार से आनंद लिया है, उन सब लीलाओं के माध्यम से बताया गया। परंतु हम लोगों ने उसे कहानी समझ के सुन तो लिया, परंतु समझा नहीं। अभी भी समझ में बात नहीं आई कि कैसे करना चाहिए, अभी पल्ले नहीं पड़ी बात। जब ये बात समझ में नहीं आ रही है तो भगवान कहते हैं कि इसको मैं कैसे समझाऊं, तो मुझे स्वयं आना पड़ेगा, मुझे स्वयं आना पड़ेगा। कैसे? कि अगर भक्ति कैसे करनी है ये बताना है तो भक्त के रूप में आना पड़ेगा। तो भगवान भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने भक्ति कैसे की जाती है ये समझाया, ये सिखाया, ये दिखाया। अब भक्ति जो है उसका एक एक पूरा प्रकरण है चैतन्य चरितामृत में, किस तरीके से भगवान की भक्ति की जाती है चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है। स्वयं भगवान भक्त के रूप में आए, भक्त अवतार भी कहते हैं। अब वो बात भी हमें समझ में नहीं आ रही है, नहीं पल्ले पड़ रही है, नहीं पल्ले पड़ रही है, क्योंकि वो लेवल जो है वो हमसे बहुत ऊंचा, क्योंकि स्वयं भगवान है और हम जो है उनको कॉपी नहीं कर सकते, मिमिक नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि वहां तक कार्य नहीं करती कि हम कैसे करें, भगवान की नकल कैसे मार लें, भगवान की नकल कैसे कर लें, भगवान को हम जो है वहां पर कॉपी नहीं कर सकते। तब जो है भगवान अपने भक्त को भेजते हैं फिर से हम जैसा साधारण मनुष्य बना के, आज के संदर्भ में, आज के युग के अंदर, कि अब इनके माध्यम से आप भक्ति सीखोगे। आज हम जितने भी लोग जो है भक्ति के अंदर अरत हो रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे सबके शिक्षा गुरु प्रभुपाद, उन्हीं की बुक किताबों के माध्यम से, उन्हीं के ग्रंथों के अनुवाद के माध्यम से, उन्हीं के ग्रंथों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उन्हीं के बनाए आदर्शों, उन्हीं के बनाए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद लीलामृत जो है वो भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से अलग नहीं है, आने वाले कल के अंदर उसी का एक अंश है, उसी की कंटिन्यूएशन है। अगर हमें भक्ति करनी है, भगवान को समझना है और भगवान के सेवा में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए प्रभुपाद लीलामृत, चाहे छोटा ग्रंथ पढ़िए चाहे बड़ा ग्रंथ पढ़िए, पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। उसके बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, पढ़ना ही है। आप देखेंगे कैसे आंसू बहते हैं आपके, कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत करी है, कितनी तैयारी करी है। अभी एक हमने जो है पीछे आर्टिकल पढ़ा था प्रभुपाद के बारे में, शांतिपुर कितने लोग गए, शांतिपुर में जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो है जो पुजारी अपने संस्मरण बता रहा है, तो बहुत साल पहले मेरे मंदिर में एक भक्त आया करते थे, पीछे आगे बैठ जाते थे खंभे के पास, जप करते थे चले जाते थे, आते थे जप करते थे चले जाते थे। बहुत दिनों के बाद मेरा उनसे परिचय हुआ, मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, तो कहने लगे कि मैं ऐसे ऐसे, मेरा नाम अभय चरण अरविंद डे है, मैं ऐसे ऐसे अपने गुरु महाराज के आदेश को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहते उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए, वृंदावन चले गए थे, तो वहाँ नहीं आ पाए। फिर एक दिन मैंने देखा प्रकट हो गए, तो उन्होंने भगवे वस्त्र पहने हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो कहने लगे अब मैं भक्ति वेदांत स्वामी हो गया हूँ, भक्ति वेदांत स्वामी हो गया हूँ, अब मैं गुरु के कथन को पूर्ण करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया हूँ, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके कथन को पूरा कर पाऊंगा कि विदेशों में जाके भगवत नाम का प्रचार कर सकूं। कहते कुछ दिनों के बाद फिर गायब हो गए, नहीं मिले मुझे, चले गए होंगे कहीं। कहता एक सुबह मैंने देखा कि एक 30-40 अंग्रेज भक्तों की टोली, माथे पे तिलक लगाए हुए, भगवे कपड़े पहने हुए, सफेद कपड़े भी पहने हुए, सर साफ, बाल नहीं है, चुटिया रखी हुई है, गले में जपमाला है, कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने जो है शांतिपुर के मंदिर में प्रवेश किया, और उनके साथ वही भक्ति वेदांत स्वामी थे। उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया कि किस प्रकार से भगवान नाम का प्रचार विदेशों में किया जा सकता है। तो वो जो मेहनत है, वो जो उनकी एक एफर्ट्स हैं, कैसे उन्होंने तैयारी करी, कैसे उन्होंने मेहनत करी, उसको पढ़ के हमें जो है बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हम भक्ति में आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो है इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। बड़ा नहीं पढ़ सकते हैं तो छोटे से आरम्भ करें, छोटे ग्रंथ को पढ़ें, जो उसका कंसाइज एडिशन है शिल्पोपाद, उसको पढ़ना चाहिए हर एक भक्त को। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी भक्ति जो चल रही है अभी सीढ़ी पे चल रही है, जैसे ही आप उस ग्रंथ को पढ़ेंगे ना तो लिफ्ट लग जाएगी, एकदम तरक्की करेंगे आप, एकदम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा निश्चय मत है। और मैंने देखा, बहुत लोगों को देखा है, जितने लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा है उनकी भक्ति जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करी है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।